नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन नीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे
प्रिय मित्र, आपका इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। हम इन दिनों उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने परमेश्वर के द्वारा किए गए सृष्टि को देख रहे थे कि किस दिन परमेश्वर ने क्या बनाया। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने छठवें दिन पृथ्वी पर हर एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु अर्थात सब प्रकार के जंतुओं को बनाया। परंतु आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत को मानव जगत से पूर्ण रूप से पृथक करते हैं और यही पृथकीकरण मानव रचना का आधार भी है। वह कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। यह सृष्टि आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत रुचिदायक है क्योंकि प्रथम आदि माता पिता आपके और मेरे दादा के परदादा थे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम चचेरे भाई बहन हुए, अर्थात पूरा मानव जाति एक परिवार के ही सदस्य हैं या संबंध रखते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति एक अध्याय के 26 पद को पढ़ें। एक अध्याय उसके 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। मित्रों, इस पद को पढ़ने के पश्चात प्रश्न उठता है कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, और इसके बारे में हम उत्पत्ति दो अध्याय में पाते हैं। लेकिन कुछ क्षण के लिए हम इस विषय पर विचार करेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य समस्त प्राणियों पर अधिकार रखे। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को समस्त पृथ्वी तथा उस पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पक्षियों पर अधिकार दिया। यह कोई साधारण बात नहीं थी क्योंकि परमेश्वर ने आदम को एक अद्भुत अधिकार दिया था जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे कि परमेश्वर आदम से कहते हैं कि उसे कुछ निश्चित कार्य करना है इस सृष्टि के लिए जिस पर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। उत्पत्ति एक अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति एक के 27 पद में, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। मित्रों, यहाँ पर हम मनुष्य की सृष्टि का एक साधारण सत्य पाते हैं और इस पद में हम तीसरी बार 12 शब्द को पाते हैं जिसका अर्थ है बिना किसी तत्व के कुछ उत्पन्न करना। 12 शब्द एक सत्य को स्पष्ट करता है कि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा रची गई है और यह एक विशेष सृष्टि है। यह समस्त सृष्टि या जीवों से भिन्न है। यह पूर्णता एक नई वस्तु है जिसका विकास किसी वस्तु या अन्य पदार्थ से नहीं हुआ। यह 12 शब्द वही शब्द है जिसका प्रयोग उत्पत्ति एक अध्याय के एक पद में हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड की रचना की, उसके पश्चात जीवित प्राणियों की। उत्पत्ति एक अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने विशालकाय समुद्री जल जंतुओं तथा प्रत्येक जीवित और तैरने फिरने वाले जंतुओं की सृष्टि की। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। इतना ही नहीं, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप तथा अपनी समानता में बनाया, अर्थात मनुष्य को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दी। मनुष्य की सृष्टि के विषय में परमेश्वर हमें और अधिक जानकारी दूसरे अध्याय में देंगे, और इसके द्वारा से हम यह देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य की सृष्टि की व्याख्या की है और पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन नहीं किया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, बस यही जानकारी हमें दी गई है और इसे छोड़कर दूसरी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। और हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमेश्वर इस सृष्टि की जानकारी भी हमें दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सृष्टि के विषय में सिर्फ एक ही सृष्टि का वर्णन करना उचित समझा, और वह है मनुष्य की सृष्टि। क्या आप जानते हैं क्यों? यह इसलिए है क्योंकि यह विवरण मनुष्य के लिए ही रखा गया है या लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाने कि उसकी सृष्टि कैसे हुई है। यह इस प्रकार से है जैसे परमेश्वर हमसे कह रहा हो कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सृष्टि पर विशेष ध्यान दो और ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में काल्पनिक न बनो। यह पद हमें कुछ अद्भुत बातें बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वचन परमेश्वर का महान कथन है। इससे बढ़कर और अधिक व्याख्या मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह एक अद्भुत बात है। आप सोचते होंगे कि इसका क्या अर्थ है या इसका क्या मतलब है। यह अच्छी बात है, और मैं सोचता हूं कि मनुष्य परमेश्वर के समान है और यह त्रिएकता के जैसे है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें मालूम है आप क्या कहने वाले हैं और आपके कहने का अर्थ क्या है। आपके कहने का मतलब है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्राणी है। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि यही सही और सत्य है। प्रेरित पौलुस पहला थिस्सलुनियों की पत्री उसके 5:23 में इस प्रकार कहते हैं, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। यद्यपि यह सही है, फिर भी हम अगले अध्याय में इसके बारे में देखेंगे, जब हम उस अध्याय में पहुंचेंगे, कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। मित्रों, हम यहाँ पर एक और विशेष बात देखते हैं कि मनुष्य एक व्यक्तित्व है, और उसका एक व्यक्तित्व होने के कारण वह अपने अस्तित्व को जानने वाला प्राणी है। वह अपने विषय में आत्मज्ञान रखता है, इसलिए मनुष्य स्वयं से निर्णय लेने वाला प्राणी है। मनुष्य एक स्वतंत्र इच्छा प्राणी है, अर्थात स्वेच्छाधारी प्राणी है। यही विशेषता या गुण मनुष्य को अनोखा या आदित्य बनाती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का मनुष्य को अपनी समानता या स्वरूप में बनाने का यही मतलब था। अब और एक महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं जो इसी अध्याय के 27 में है। परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। इस पद में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि स्त्री व पुरुष की सृष्टि किस प्रकार हुई, परंतु अगले अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां इस विषय पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर का अभिप्राय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह हमें एक ही समय में सृष्टि से संबंधित सभी भेदों के विषय बताना नहीं चाहता है। इसलिए उसने हमारे लिए उत्पत्ति की पुस्तक का 2 रखा है, जहां हम सूक्ष्मता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। हमें जितना जानने की आवश्यकता है उतना ही हमें दिया गया है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने विषय में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि उसने सृष्टि की रचना किस प्रकार से की है। वह केवल इतना प्रकट करते हैं कि वह सृष्टि करता है। सिर्फ विश्वास ही है जो हमें समस्त सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य देता है, और यह विश्वास हमें उन महत्वपूर्ण सच्चाइयों को देती है जिसे हम इब्रानियों की पत्री उसके 11:3 में पाते हैं, जहां पर लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। आज जो भी चीजें हम देखते हैं वे किसी वस्तु से बनाई गई है जो पहले कभी थी ही नहीं, परंतु सृष्टि बिना कुछ या कुछ नहीं से बना है। किसी ने कहा है कि कृपया इसका विवरण दीजिए। मेरे मित्रों, मैं इसका विवरण नहीं दे सकता और न ही क्रम विकास इसका विवरण दे सकता है, क्योंकि क्रम विकास सिद्धांत ने आज तक यह उत्तर नहीं दिया है कि कुछ नहीं से कुछ कैसे बन गया। उनके अनुसार यह एक छोटे अमीबा से आरंभ होता है, या एक कचड़े के डिब्बे के साथ, या एक छोटे समुद्री पौधे के साथ, या पेड़ पर बैठे जानवर के साथ। मित्रों, किसी चीज को आरंभ करने के लिए हमारे मस्तिष्क में कुछ होना चाहिए, परंतु बाइबल कुछ नहीं से आरंभ करती है। परमेश्वर ने सृष्टि की, यह इस अध्याय का आश्चर्यजनक प्रकाशन है। उत्पत्ति एक अध्याय के 28 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी रचनाओं को कुछ असामान्य बातें दी हैं। सर्वप्रथम वह मनुष्य से कहता है, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और इसी बात को परमेश्वर ने पुनः दोहराया है जब उसने स्त्री की रचना की। इस प्रकार से और एक बात स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक संबंध अर्थात पति पत्नी के बीच पारिवारिक संबंध का परिचय परमेश्वर ने ही दिया है। यह एक रुचिकर बात है कि हमारे समय के लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने शारीरिक संबंध के बारे में खोज की है और अपने आप को कोलंबस समझते हैं। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कैसे मनुष्य इस पृथ्वी पर भरते जाएंगे। वास्तव में परमेश्वर ने चार मुख्य नियमों का प्रयोग मनुष्य को इस ब्रह्मांड में लाने के लिए किया। उसमें पहला है सीधे परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा, जिसमें आदम की रचना हुई। दूसरा है अप्रत्यक्ष सृष्टि, जिसमें उसने हवा को बनाया। और तीसरा नियम है कुंवारी से जन्म लेना। इसी तरीके से यीशु मसीह मानव परिवार में शामिल हुए। और चौथा नियम है प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा, जिसे आज सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मित्रों, हमने प्राकृतिक वंश को घसीटकर बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा दिया है, जिसकी इच्छा परमेश्वर ने कभी नहीं की। परमेश्वर ने मनुष्य को वंश बढ़ाने के लिए रचा, और यह बहुत ही अद्भुत और महिमापूर्ण सत्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं रचा कि वह गंदे, घिनौने, अश्लील व अपवित्र रूप से मनुष्य के वंश की उत्पत्ति करे, जैसा कि आजकल हम अनेक व्यक्तियों को देखते हैं। आज कई लोग गंदी और अश्लील पुस्तकें लिखते हैं और उसे साहित्य कहकर पुकारते हैं। आज मनुष्य कई अश्लील हरकतें करता है और उसे कला का नाम देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कुछ शहरों के लोग इस प्रकार की हरकतों का विरोध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को या स्त्री पुरुष के संबंध को अश्लीलता के उद्देश्य से नहीं बनाया, परंतु एक पवित्र परिवार होने के लिए बनाया। वे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उस बात को कह रहे हैं जिसका संघर्ष मैं एक लंबे समय से करता आ रहा हूं। कला तो मनुष्य के अंदर विद्रोह और घृणा उत्पन्न करता है, उसे हम कला नहीं कह सकते। मित्रों, संसार में ऐसा कुछ भी कला नहीं है, परंतु अश्लीलता को कला का नाम देकर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का काम किया जाता है। परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को इसलिए नहीं बनाया कि वह इस प्रकार की अश्लील हरकतें करे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर जो स्वयं एक व्यक्ति है, उसने मनुष्य को एक अमर आत्मा दी है, और उसने मनुष्य को एक सच्ची और अच्छी व्यक्तित्व प्रदान की है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य के पास आत्मज्ञान है, उसके पास स्वतंत्र इच्छा की शक्ति है, और उसके पास विभिन्न मौलिक और नैतिक जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, फलो फूलो और समस्त पृथ्वी में भर जाओ। यहां पर परमेश्वर मनुष्य को वंश उत्पत्ति द्वारा पृथ्वी पर फिर से यानी दोबारा भर जाने की बात कह रहे हैं। कृपया यहां पर शब्द भर जाओ पर ध्यान करें, जिसका अर्थ है दोबारा से उत्पत्ति करके पृथ्वी को अपने वंश से भर दो। इस वचन के अनुसार ऐसा लगता है कि मनुष्य की सृष्टि से पूर्व भी कोई अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर थे। ये प्राणी चाहे कोई भी हो, मनुष्य की सृष्टि से पहले ही विलीन हो चुके थे। मित्रों, हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि पृथ्वी को अपने वश में कर लो। मैं सोचता हूं कि यही मनुष्य और वैज्ञानिकों की खोज का आधार है, जिसमें से हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं। नीतिवचन की पुस्तक उसके 25 अध्याय के 2 पद में लिखा है, नीतिवचन 25 के 2 पद में, परमेश्वर की महिमा किसी बात को गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात को ढूंढ निकालने में है। मित्रों, परमेश्वर ने पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य पदार्थों को छिपा रखा है, जैसे हीरे और बहुत से धन, परंतु उसने उन्हें प्राप्त करने की समझ भी मनुष्य को दी है कि वह पृथ्वी के गर्भ की वस्तुओं को भी खोदकर अपने वश में या अधिकार में कर ले। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के वचन के बारे अध्ययन करना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम किसी प्रयोगशाला में जाएं और परीक्षण की परखनली व दूरबीन का प्रयोग करें, परंतु दुर्भाग्यवश मनुष्य जब बाहर आता है तो उसके हाथ में एक अणुबम होता है और वह आज सारे मानव परिवार को विनाश करने पर तुला हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया कि पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करो, अर्थात पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। मित्रों, पवित्र वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में एक माली की तरह घास काटने के लिए नहीं रखा था, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर शासन करने के लिए रचा था। मैं सोचता हूं कि आदम मौसम पर भी अपना नियंत्रण रखता था, जिस प्रकार हम अपने घरों में एयर कंडीशन पर करते हैं। उसने इस पृथ्वी पर शासन किया, अर्थात अधिकार रखा। इसका प्रमाण हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उनका अधिकार प्रकृति पर भी था। उसने आंधी तूफान से कहा, शांत हो, थम जा, और तूफान थम गया। उसने 5,000 से अधिक लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से भरपेट भोजन कराया। मित्रों, मेरा यह मानना है कि आदम भी इस प्रकार के कार्य को अपने पाप में गिरने से पहले कर सकता था, क्योंकि ये सारे अधिकार उसे दिए गए थे। लेकिन जब उसने पाप किया, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो उसने वह अधिकार खो दिया जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक के 1 अध्याय और उसके 29 पद में हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने समस्त पृथ्वी का प्रत्येक पौधा जो बीज उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक पेड़ जिस पर बीज वाले फल होते हैं तुम्हें दिया है, सब तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मित्रों, इस वचन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में मनुष्य शाकाहारी था, परंतु जल प्रलय के पश्चात मनुष्य मांसाहारी बन गया। इसके पहले वह फल फूल और कंदमूल खाया करता था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में हम देखते हैं, उत्पत्ति 1 उसके 30 और 31 पद में, तथा पृथ्वी के प्रत्येक पशु और आकाश के प्रत्येक पक्षी और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जंतु, अर्थात प्रत्येक जिसमें जीवन का प्राण है, प्रत्येक के भोजन के लिए सब प्रकार के हरे पौधे दिए गए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा, और देखो वह बहुत अच्छा था। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, और इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मित्रों, इस प्रकार हमारा प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, और इसलिए यह अच्छा होगा कि हम इस अध्याय के सार को दोबारा से एक बार देख लें, और हमने इस अध्याय में कौन कौन सी मुख्य बातों का अध्ययन किया है। सर्वप्रथम मुख्य बात तो यह है कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में परमेश्वर की चर्चा 32 बार हुई है। पवित्र बाइबल इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करती है कि वह परमेश्वर है, लेकिन बाइबल ऐसा क्यों नहीं करती है? क्योंकि भजन संहिता 14 के 1 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। मित्रों, पवित्र बाइबल लिखित रूप में हमारे सामने इसलिए आई कि वह आत्मिक, धार्मिक तथा उद्धार की सत्यता को प्रकट करे, और हम इसे केवल विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब हमारे पास एक सत्य है कि परमेश्वर ही इस सृष्टि का या ब्रह्मांड का रचयिता है, सृष्टिकर्ता है। इस प्रथम अध्याय में हम परमेश्वर की एकता, शक्ति तथा व्यक्तित्व को देखते हैं और इसी बात को प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 1:20 में लिखते हैं, क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वे स्पष्ट रूप से कैसे दिखाई देते हैं। मित्रों, यहां पर यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व को उसकी रचना या सृष्टि के द्वारा ही समझा जा सकता है, जिसे हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए उनके पास कोई भी बहाना नहीं है। मित्रों, मैं आपको यहां पर स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने विश्वास में आपको बंद कर लिया है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य सत्यों पर भी विचार करेंगे। यह अध्याय 1 से अधिक ईश्वर के होने से इनकार करता है, अर्थात अधिक ईश्वर होने की मान्यता नहीं देता है। इसमें पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, और दूसरी बात यह तत्व की अमरता को नहीं मानता है, क्योंकि इस अध्याय का पहला शब्द है आदि में या प्रारंभ में, और इस प्रकार से सबका आरंभ है, और आरंभ है तो अंत भी होगा। यह सच बात है कि किसी समय वैज्ञानिकों ने यह शिक्षा दी है कि वस्तु या तत्व अमर हैं। और तीसरी बात, यह अध्याय सर्वेश्वरवाद को मान्यता नहीं देती, जो सारे ब्रह्मांड को ईश्वर मानती है। उनका यह मानना है कि परमेश्वर सभी वस्तुओं के सामने या समक्ष हैं और वे स्वयं वस्तु में नहीं हैं। इस विचार का खंडन हमें इस अध्याय में मिलता है। और अब चौथी बात, भाग्यवाद या दैववाद पर विश्वास नहीं करता है। परमेश्वर अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और अब अंत में इस अध्याय के 4 मुख्य बातों को बताना चाहता हूं, जिसे हम इस अध्याय में पाते हैं। पहला है आज्ञा, दूसरा प्रगति या विकास, तीसरा तत्परता और चौथा पूर्णता। इस प्रकार उत्पत्ति का पहला अध्याय यहां पर समाप्त होता है, लेकिन अब हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस अध्ययन में हम सप्त के दिन, 5 दिनों की सृष्टि का सारांश एवं पुनः स्थापन, मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य के समक्ष नियम प्रस्तुत करना और स्त्री की रचना को देखेंगे। प्रिय मित्रों, इस अध्याय में हम पहली बार प्रकाशन के महान सिद्धांत को पाते हैं, परंतु इसे हम परमेश्वर के वचन में बार बार पाते हैं। यह प्रेरणा की एक अंगुली छाप है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था की पुनरावृत्ति या व्यवस्था का सार है। परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को देने के लिए एक प्रथा है कि श्रृंखला की उन महान तथ्यों और सच्चाइयों को संक्षिप्त में घोषित करें। इसके पश्चात वह वापस आएगा और इस श्रृंखला को लेगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह उस पर प्रकाश डालेगा और उस विशेष वस्तु पर उसे बढ़ाएगा या विस्तार करेगा। वह इस कार्य को अध्याय 2 में करने जा रहे हैं, उन 6 दिनों की सृष्टि के साथ जिसे हमने अध्याय 1 में देखा था। यही सिद्धांत व नियम हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी देखते हैं। व्यवस्था विवरण व्यवस्था की व्याख्या है जो 40 वर्षों तक निर्जन प्रदेश में रहने के अनुभव के साथ है। व्यवस्था विवरण व्यवस्था को मात्र दोहराना नहीं है, परंतु यह उसकी एक व्याख्या है, जिस प्रकार हमें सिर्फ एक ही सुसमाचार नहीं बल्कि 4 सुसमाचार दिए गए हैं, और बार बार इस प्रक्रिया का अनुसरण परमेश्वर के वचन में किया गया है। सप्त का दिन, मित्रों, हम अध्याय 2 में उन 6 दिनों की सृष्टि में से उस दिन को लेते हैं जिसमें मनुष्य की सृष्टि हुई, और अब हम इसे सप्त के दिन के साथ आरंभ करते हैं। उत्पत्ति 2:1-3 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा उनके समस्त गणों की रचना पूर्ण हुई, और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वह करता था 7वें दिन पूरा किया, और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वह करता था विश्राम किया। तब परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन सृष्टि के समस्त कार्य से जो उसने रचा और बनाया परमेश्वर ने विश्राम किया। मित्रों, हमें सप्त के दिन की महत्वपूर्णता को न भूलने के लिए कहा गया है। तो आइए देखें कि सप्त के दिन का क्या अर्थ है और कब ऐसा कहा गया कि परमेश्वर ने विश्राम किया। क्या इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर थक गया और सातवें दिन बैठकर विश्राम करने लगा? यदि आप इस रीति से देखते हैं तो यह पूर्ण रीति से बेवकूफी या मूर्खता है। परमेश्वर अपने कार्य से विश्राम किया क्योंकि उसके सब काम छठवें दिन ही पूर्ण हो चुके थे। यह एक महान आत्मिक सच्चाई है जिसे हम यहाँ पर देखते हैं। इब्रानियों की पत्री हमें बताती है कि सभी विश्वासी एक दिन विश्राम में प्रवेश करेंगे, और वह है कि हम उसके सब्त के दिन में प्रवेश करते हैं। वह क्रूस पर 2000 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए मरा, और वह हमें उस छुटकारे को पाने के लिए प्रस्ताव देता है कि हम उसमें प्रवेश करें। इसलिए पौलुस रोमियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 1 पद में लिखते हैं, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मुझे अपने आप को बचाने के लिए या उधार पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मुझे अपनी छोटी उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया है जिसकी जरूरत मुझे थी। मेरे मित्रों, अब मुझे उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उस पर विश्वास करना है। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।